ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। रामेछाप के दोरंबा शैलुंग में भूस्खलन में लापता चार लोगों की तलाश जारी। मृतकों छह लोगों के शव सौंपे गए उनके परिजनों को। भ्रष्टाचार और तस्करी नियंत्रण पर प्रभावी ढंग से काम करने का संबद्ध अधिकारियों को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया निर्देश। नियमित बिजली आपूर्ति शुरू होने के बाद से देश में तीन गुना बढ़ी बिजली की खपत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण का तथ्यांक। और लेबनान से तनाव मंडी के बाद इसराइल द्वारा 48 घंटों के लिए इमरजेंसी का ऐलान। अब समाचार विस्तार से। कल रात रामेछाप के दोरंबा शैलुंग गांव पालिका तीन में भूस्खलन में मारे गए छह लोगों के शवों को मौके पर ही जांच की गई और उनके परिवारों को सौंप दिया गया। जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी कौशल न्यौपानी के अनुसार घायलों को इलाज के लिए काठमांडू भेजा गया है, लेकिन मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। सूचना अधिकारी न्यौपाने ने बताया कि अन्य चार लापता लोगों की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन एक किलोमीटर लंबा होने के कारण तलाश में दिक्कत आ रही है। भूस्खलन में दबनी से शैलुंग तीन की 30 वर्षीय चंडिका श्रेष्ठ, उनके 18 महीने के बेटे आयुष, 57 वर्षीय उर्मिला पहड़ी, 30 वर्षीय संदीप पहड़ी, 11 वर्षीय संतोष पहरी और 14 वर्षीय विज्ञान पहरी की मौत हो गई। उसी वार्ड के लेखर्क में बीती रात भारी बारिश के कारण आए भूस्खलन में तीन घर बह गए और एक घर दब गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने तस्करी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए प्रभावी ढंग से काम करने का निर्देश दिया है। उनके सचिवालय के अनुसार राजस्व जांच विभाग, संपत्ति शोधन विभाग, सार्वजनिक खरीद निगरानी कार्यालय, राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र, राष्ट्रीय जांच विभाग, नेपाल ट्रस्ट और अन्य कार्यालयों को आज तस्करी, भ्रष्टाचार और राज्य संपत्ति के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करने का निर्देश दिया गया है। आज ही लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय की 16वीं सभा बैठक में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि बुद्ध दर्शन और संदेश को शिक्षा के माध्यम से विस्तार करने की जरूरत है। विश्वविद्यालय के कुलपति समेत रहे प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि मानव जाति के लिए ऐतिहासिक योगदान देने वाले बुद्ध दर्शन की रक्षा और विस्तार करने के लिए नई सोच के साथ संचालित विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय सभा ने करनाली प्रदेश के भूकंप प्रभावित जिलों का स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमन संबंधी प्रतिवेदन 2081 के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन समिति के सभापति माया प्रसाद शर्मा द्वारा प्रस्तुत करनाली प्रदेश के भूकंप प्रभावित जिलों का स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमन संबंधी प्रतिवेदन 2081 स्वीकृत किया गया। प्रतिवेदन के ऊपर विचार विमर्श के दौरान उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि भूकंप पीड़ितों का वास्तविक विवरण एकत्र कर लिया गया है और राहत एवं आश्रय निर्माण के लिए रकम उपलब्ध करा दिया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि भूकंप से हुए नुकसान के विस्तृत आकलन के बाद स्थायी आवास पुनर्निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि मानसून आपदा के कारण मरने वाले और लापता हुए लोगों के परिवारों को राहत वितरित की जा रही है और आगे की राहत और पुनर्वास के लिए स्थानीय तहों पर चर्चा की जा रही है। चर्चा में सांसदों ने कहा कि संघीय सरकार द्वारा भूकंप पीड़ितों को दी जाने वाली राहत राशि स्थानीय सरकार के माध्यम से हस्तांतरित की जानी चाहिए और पीड़ितों को तुरंत आसानी से राहत प्रदान की जानी चाहिए। प्रतिनिधि सभा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति की आज की बैठक में भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी ने मंत्रालय से संपादन होने वाले कार्ययोजना लगायतों के विषय पर जानकारी कराई। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने कहा कि दुग्ध और गन्ने किसानों के लिए बाकी रकम दशहरा से पहले ही भुगतान की जाएगी। आज मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री अधिकारी ने कहा कि दुग्ध किसानों को कल तक में 33,57,00,000 भुगतान किया जाएगा और बाकी 1,27,00,000,000 रकम भी जल्द ही किसानों के हाथ में दिया जाएगा। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने कहा कि महीने के अंदर उपभोक्ता अदालत का गठन किया जाएगा। आज नेपाली कांग्रेस आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग द्वारा काठमाण्डु में आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम में मंत्री भण्डारी ने कहा कि उपभोक्ता अदालत के फैसले से अभी के मिलावट कृत्रिम अभाव मूल समायोजन के विषय पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराई ने कहा कि सरकार माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य और निशुल्क बनाने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2081 मूल समारोह समिति की आज आयोजित बैठक में मंत्री भट्टराई ने शिक्षा संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और समय पर संशोधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। मंत्री भट्टराई ने अपने अपने स्तर से एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित कर इस दिन को मनाने का अनुरोध किया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल आश्विन दोगते को मनाया जाता है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के अनुसार देश भर नियमित बिजली आपूर्ति होने के बाद बिजली खपत 3 गुना बढ़ी है। प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग ने कहा कि विद्युत भार कटौती अंत के बाद पर्याप्त निरंतर बिजली आपूर्ति होने से बिजली की खपत बढ़ गई है। बारा से भारत बाबा धाम जा रही तीर्थयात्री सवार बस भारत बिहार के समस्तीपुर जिले में दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 तीर्थयात्री घायल हुए हैं। भारत के बिहार राज्य समस्तीपुर में बीती रात हुई दुर्घटना में बारा की बारागढ़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 मूर्ति पलिया के 45 यात्री घायल हुए हैं। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रवक्ता एवं डीएसपी प्रकाश सापकोटा ने दी। नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड अंतर्गत भरतपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 29 घुमावने में बस दुर्घटनाग्रस्त होने से 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 2 की हालत गंभीर है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के डीएसपी भेषराज रिजाल ने दी। घायल सभी का चितवन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में इमरजेंसी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग को संबोधित किया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, हम अपने देश की रक्षा करने और निवासियों को सुरक्षित रूप से उनके घरों तक वापस लाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। जो कोई भी हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसे चोट पहुंचाएंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमारी सेना ने इसराइल पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह की तैयारी का पता लगाने के लिए दिन रात काम किया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेना की तैयारी के चलते हम हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेटों को नष्ट करने में सफल हो पाए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के मद्देनजर इजरायल में एहतियातन 48 घंटे के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रामेछाप के दुरम्बा शैलुंग में भूस्खलन में लापता 4 लोगों की तलाश जारी। मृतकों 6 लोगों के शव सौंपे गए उनके परिजनों को। भ्रष्टाचार और तस्करी नियंत्रण पर प्रभावी ढंग से काम करने का संबद्ध अधिकारियों को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया निर्देश। नियमित बिजली आपूर्ति शुरू होने के बाद से देश में 3 गुना बढ़ी बिजली की खपत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण का तथ्यांक। और लेबनान से तनाव बढ़ने के बाद इसराइल द्वारा 48 घंटों के लिए इमरजेंसी का ऐलान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।